ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। गरीबी निवारण को पहली प्राथमिकता देने का योजना आयोग को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया निर्देश। मोगलिन पोखरा सड़क परियोजना अंतर्गत पूर्वी खंड की 73.11 किलोमीटर सड़क की पिचिंग हुई पूरी। दैलेक की भैरवी गांवपालिका 5 सियाला सामुदायिक वन में पेड़ से दबकर 2 लोगों की हुई मौत। और ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को अवैध बताते हुए उन्हें हटाने का चीन, रूस और ईरान ने अमेरिका से किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उत्पादन और उद्यमशीलता में वृद्धि करके गरीबी निवारण को पहली प्राथमिकता देने का योजना आयोग को निर्देश किया है। आयोग के कार्य संपादन और भावी कार्य दिशा के विषय में आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में उपाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों के साथ विमर्श में प्रधानमंत्री ओली ने ऐसा निर्देश किया। इस बात का जिक्र करते हुए कि पूर्वाधार विकास के काम लगभग पूरे होने के चरण में है, प्रधानमंत्री ने अब हुनर विकास, उद्यमशीलता, रोजगार सृजन, कृषि क्षेत्र में बड़े उत्पादन और निवेश वृद्धि पर बल देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आगामी जेठ 2 से 4 गति तक काठमांडू में आयोजित होने वाले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम को चुस्त बनाने का निर्देश किया। प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार में संचालित किए गए सगरमाथा संवाद सचिवालय के अवलोकन के बाद प्रधानमंत्री ओली ने ऐसा निर्देश किया। बता दें कि सरकार ने संवाद कार्यक्रम के लिए पड़ोसी देश भारत, चीन समेत विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों और सरकार प्रमुखों को विशेष अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया है। मुगलिन पोखरा सड़क परियोजना अंतर्गत पूर्वी खंड की 73.11 किलोमीटर पिचिंग का काम पूरा हुआ है। तनहू के आबू खैरेनी से जामुने तक पूर्वी खंड में अब तक 4 लेन और 2 लेन सहित 73.11 किलोमीटर तक पिचिंग का काम पूरा हुआ है। बता दें कि पूर्वी खंड अंतर्गत जिला मुख्यालय दमोली बाजार तक पिचिंग का काम शुरू भी हो गया है। दैलेक की भैरवी गांवपालिका 5 सियाला सामुदायिक वन में पेड़ से दबकर आज 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में स्थानीय 49 वर्षीय तर्क बहादुर शाही और 27 वर्षीय इंद्र बहादुर शाही की मौत हुई है। बता दें कि शाल का पेड़ काटने के दौरान उसी पेड़ से दबकर उनकी मौत हो गई। ये जानकारी स्थानीय अगुवा देवीराम आचार्य ने दी। विपक्षी 4 दलों के समाजवादी मोर्चा ने चैत 15 गते काठमांडू में जनसभा आयोजित करने का निर्णय किया है। समाजवादी मोर्चा की आज काठमांडू में हुई बैठक ने 15 गते की जनसभा को वृहत बनाने का निर्णय किया है। ये बात बैठक में सहभागी नेत्र विक्रम चंद्र विप्लव के नेतृत्व वाली नेकपा के नेता खड़ग बहादुर विश्वकर्मा ने बताई। समाजवादी मोर्चा ने निष्कर्ष निकाला है कि राजावादियों की सक्रियता गंभीर और परिस्थिति को जटिल बनाने वाली है। नेकपा एमाले ने चैत 4 गते को केंद्रीय सचिवालय की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों और समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। एमाले केंद्रीय कार्यालय के सचिव डॉ भीष्म अधिकारी ने यह जानकारी दी। बैठक ललितपुर के चैसल स्थित एमाले मुख्यालय में दोपहर 1 बजे आयोजित की जाएगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। काठमांडू में आज से 3 दिवसीय हिमवत खंड कला साहित्य और संस्कृति सम्मेलन शुरू हुआ है। सम्मेलन का उद्देश्य हिमवत खंड क्षेत्र की विविध भाषाओं, संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान परंपरा को आत्मसात करते हुए लोक संस्कृतियों को उजागर करना है। सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किया। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि कला साहित्य और संस्कृति पर चर्चा और बहस से हिमवत खंड की गरिमा उजागर होगी। समारोह में मदन भंडारी फाउंडेशन के अध्यक्ष उषा किरण भंडारी ने कहा कि विश्वभर में फैले नेपाली भाषी समुदाय को नेपाली लोक संस्कृति, साहित्य और कला के आयामों को दुनिया भर में फैलाने के लिए एकजुट होना चाहिए। तीन दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में हिमवत खंड के 100 से अधिक नेपाली भाषी लोग शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में सातों प्रदेशों की लोक संस्कृतियों पर चर्चा होगी, साथ ही नेपाली संचार माध्यमों में नेपाली भाषा पर विचार गोष्ठी, चलचित्र प्रदर्शन और काव्य उत्सव भी आयोजित होंगे। आयोजक समिति के सह संयोजक प्रोफेसर केशव सुवेदी ने बताया कि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृतियों पर भी चर्चा होगी। आज ही नेपाली चलचित्र में नेपाली भाषा के प्रयोग पर एक परिसंवाद का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने साहित्यकार लील बहादुर क्षेत्री के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से प्रधानमंत्री ओली ने शोक संतप्त परिवारजन और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साहित्यकार लील बहादुर क्षेत्री का 93 वर्ष की आयु में कल रात असम की राजधानी गुवाहाटी में निधन हो गया। महोत्तरी जिले के मटिहानी 6 में 5 शैया वाला एक प्रसूति गृह का निर्माण किया गया है। ग्रामीण बस्ती मटिहानी में प्रसूति गृह के निर्माण से स्थानीय महिलाओं को सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद जताई गई है। मटिहानी के नगर प्रमुख हरिप्रसाद मंडल ने कहा कि अब गर्भवती महिलाओं को प्रसूति के लिए दूर दराज के अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होगी और आर्थिक अभाव के कारण उपचार से वंचित होने की स्थिति भी नहीं रहेगी। ये प्रसूति गृह राष्ट्रीय योजना आयोग के विशेष अनुदान कार्यक्रम और मटिहानी नगर पालिका के आर्थिक स्रोत से करीब 2 करोड़ रूपये की लागत में बनाया गया है। मिथिला का महाकुंभ मानी जाने वाली 15 दिवसीय मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा आज जनकपुर धाम में पंचकोशी अंतर्गृह परिक्रमा के साथ संपन्न हुई है। बता दें कि जनकपुर धाम की हनुमानगढ़ी से फागुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर फागुन पूर्णिमा तक होने वाली मिथिला मध्यमा परिक्रमा में इस बार लाखों की तादाद में तीर्थयात्री सहभागी हुए। मिथिला मध्यमा परिक्रमा में 14 दिन सहभागी होने वाले अनिवार्य रूप में अंतर्गृह परिक्रमा में सहभागी होते हैं। ज्ञात हो कि परिक्रमा के तीर्थयात्री नेपाल की 107 किलोमीटर और भारत की 26 सहित 133 किलोमीटर की यात्रा खाली पैर ही तय करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन, रूस और ईरान ने सभी अवैध और एकतरफा प्रतिबंधों को समाप्त करने का आह्वान किया है और तेहरान के खिलाफ बल के खतरों को छोड़ने का आग्रह किया है। आज बीजिंग में तीनों देशों के बीच वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान में ये बात कही गई। तीनों देशों के बीच ये बैठक ईरान द्वारा परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने की अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद हुई है। आज जारी एक संयुक्त बयान में तीनों देशों ने कहा कि आपसी सम्मान पर आधारित राजनयिक जुड़ाव और संवाद ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को संबोधित करने के लिए प्रभावी और व्यावहारिक विकल्प थे। बता दें कि चीनी उप विदेश मंत्री मा झाओक्सू, रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव और ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने वार्ता में भाग लिया। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गरीबी निवारण को पहली प्राथमिकता देने का योजना आयोग को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया निर्देश। मुगलिन पोखरा सड़क परियोजना अंतर्गत पूर्वी खंड की 73.11 किलोमीटर सड़क की पिचिंग हुई पूरी। दैलह की भैरवी गांवपालिका 5 सियाला सामुदायिक वन में पेड़ से दबकर 2 लोगों की हुई मौत और ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को अवैध बताते हुए उन्हें हटाने का चीन, रूस और ईरान ने अमेरिका से किया आग्रह। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।